Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाशपद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति शांति
ओ कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत सातवें मंत्र की व्याख्या है।
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मभिः अंगुष्टमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो यपरोपि दृष्टः बालाग्रसतभागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं न पुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते।
पांचवें अध्याय के अंतर्गत विगत छह मंत्रों तक महावाक्य में प्रयुक्त तत्पद का अर्थ बताया गया कि तत्पद कैसा है। अब इस सातवें मंत्र से त्वम पद के बारे में विचार करते हैं कि त्वम पद कैसा है। त्वम पद का अर्थ होता है आप जिसको ये कहते हैं कि मैं, वह त्वम पद का अर्थ है, वो त्वम पद है। अपने बारे में तुम्हें अपने आप को बताना हो तो मैं शब्द प्रयोग करोगे, और आपके बारे में कोई दूसरा कहीं बताएगा तो तुम शब्द प्रयोग करेगा। आप जिसको मैं शब्द प्रयोग करते हैं वही दूसरा व्यक्ति तुम शब्द से प्रयोग करेगा। संस्कृत में जिसको, हिंदी भाषा में जिसको आप तुम कहते हो उसी को संस्कृत भाषा में त्वम कहते हैं। ये जो तुम शब्द आया है वह संस्कृत का त्वम पद द्वारा अपभ्रंश होकर तुम बना है। तुम का शुद्ध रूप है त्वम। त्वम शब्द का अर्थ होता है तुम एव, तुम ही हो, इसलिए त्वम। तो कैसा है ये तत्पद यानी त्वम पद, आप कैसे हैं इसके बारे में विचार करते हैं। आप कैसे हैं, आपके स्वरूप के बारे में विचार करते हैं यानी जीव के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं। दो चीज हैं, एक रूप होता है और दूसरा स्वरूप होता है। किसी के मिलकर जो तुम्हारी पहचान बनती है उसको रूप कहते हैं। किसी के साथ जुड़कर तुम्हारी जो पहचान है वो तुम्हारी पहचान, वो तुम्हारा रूप होगा। शरीर के साथ जुड़कर तुम्हारा जो पहचान होगा वो तुम्हारा रूप होगा। प्राण के साथ जुड़कर तुम्हारा जो पहचान होगा वो तुम्हारा रूप होगा। इंद्रियों के साथ जो पहचान वह तुम्हारा रूप है। मन और अंतःकरण के साथ जुड़कर जो तुम्हारा पहचान है वो तुम्हारा रूप है, क्योंकि ये सब दूसरे हैं, तुम नहीं हो। शरीर तुम नहीं हो, लेकिन शरीर के साथ जुड़कर तुमने अपने आप को एक आइडेंटिटी बना ली, एक पहचान बना ली। कब तुम कह रहे हो कि मैं स्त्री हूं, ये तुम्हारी जो पहचान है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये शरीर के साथ जुड़कर है, इसलिए ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये रूप है। तो स्त्री का रूप है क्योंकि स्त्री शरीर का है। स्त्रीपना ये शरीर में है, तुम्हारे में तो है ही नहीं, आगे के मंत्रण निषेध कर ही दिया है। स्वरूप में स्त्री नहीं है, रूप में स्त्री है। शरीर के साथ जोड़कर तुम अपना जो पहचान देते हो वह पुरुष, मैं पुरुष हूं, तुम पुरुष हो, ये जो कहा जा रहा है, ये जो पहचान है तुम्हारी अपनी, ये तो शरीर से संबंधित होकर बनाया गया पहचान है। क्योंकि शरीर पुरुष का है, पुंलिंग का है, और उससे जुड़कर तुमने ये पहचान बना ली कि मैं पुरुष हूं। तो पुरुष, मैं पुरुष हूं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि आगे के मंत्र में कह दिया है कि तो तुम पुरुष नहीं हो, फिर भी तुम अपना पहचान देते हो कि मैं पुरुष हूं। तो फिर मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ब्राह्मण तुम्हारा रूप है, शरीर से संबंधित है ब्राह्मण। ब्राह्मणत्व तुम्हारे स्वरूप से संबंधित नहीं है। वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब शरीर से संबंधित हैं। तुम्हारे स्वरूप में ये नहीं है, इसलिए ये तुम यदि कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हरिजन हूं, दलित हूं, ये सारे के सारे चीज तुम्हारे में आरोपित हैं, इसलिए आरोपित चीज है वह रूप बनता है, स्वरूप नहीं बन सकता। स्वरूप तो शुद्ध होता है, आरोपित नहीं होता है। स्वरूपतः स्व माने अपना निजी रूप, उसी को स्वरूप कहते हैं। और ये स्त्रीपना, पुरुषपना, ब्राह्मणपना, क्षत्रियपना, यह तो शरीर के संबंध से बनाया गया होने के कारण ये तुम्हारे रूप हैं। इसलिए रूप अनेक हो सकते हैं, स्वरूप अनेक नहीं हो सकते। स्वरूप एक है, रूप अनेक है, और इस अनेक रूप को लेकर ही विश्वरूप बनता है। विश्वरूप माने अनेक रूप, अनेक रूप माने विश्वरूप। अब यदि प्राण से संबंधित तुम अपना पहचान देते हो, मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा रूप है। किससे संबंधित रूप है ये? आप लोग बहुत दिनों से वेदांत सुनते हो, बहुत वर्षों से सुनते हो, मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, ये किससे संबंधित है? प्राण से संबंधित है बाबा। भूख और प्यास प्राण का धर्म है। मैं प्यासा हूं, इस समय तुम कैसी अवस्था में हो तो तुम कहते हो कि मैं इस समय प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मुझे खाने नहीं मिला है, मुझे पीने को नहीं मिला है, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, ये तुम्हारा प्राण से संबंधित रूप है। इसी तरह मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये तुम्हारा स्वरूप कर्मेंद्रियों से संबंधित है। मैं लंगड़ा हूं, कोई लंगड़ा व्यक्ति अपना परिचय क्या देगा? मैं लंगड़ा हूं, अपाहिज हूं, विकलांग हूं, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, मैं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, ये तुमने जो अपना परिचय दिया, ये तो ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित तुम्हारा रूप है। मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं चलने वाला हूं, ये तो इंद्रियों से संबंधित रूप है, तुम्हारा निज रूप नहीं है। दूसरे से जुड़कर तुम अपना परिचय दे रहे हो, तो ये तुम्हारा रूप है, स्वरूप नहीं है। और कदाचित तुम ये परिचय दो किसी को, मैं बड़ा दुखी हूं आजकल, मैं बहुत दुखी हूं, बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, मैं बहुत दुखी हूं, नौकर समय में नहीं आते हैं, मैं दुखी हूं आजकल, पानी नहीं आता है, मैं बहुत दुखी हूं, इन सब के चलते मैं बहुत दुखी हूं। और जो तुम्हारा ये दुखीपना, जो तुमने अपने पहचान दी है कि मैं दुखी हूं, ये दुखीपना, ये मन से संबंधित तुम्हारी पहचान है। क्योंकि और सुख और दुख ये मन का धर्म है, मन से संबंधित होकर तुमने अपना पहचान बना ली कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, आजकल मुझे मैं सुखी हूं, नौकर आ गया इसलिए मैं, बहुत अच्छा नौकर मिल गया इसलिए मैं आजकल सुखी हूं, बहुत अच्छा ड्राइवर मिल गया इसलिए मैं आजकल सुखी हूं, आजकल पानी की कमी नहीं है, मैं आजकल सुखी हूं, ये सुखी और दुखीपना जो तुमने अपनी पहचान दी, ये तो मन से संबंधित होने के कारण तुम सुखी दुखी हुए हो, ये मन से जुड़कर तुम्हारा पहचान बना है। और कदाचित तुम ये कहते हो कि मैं नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, और मैं जानता हूं, इन सबको तो मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, और ये पहचान यदि तुमने किसी के सामने अपनी दी, तो ये बुद्धि से जुड़कर दिया गया पहचान, तुम्हारी पहचान है, क्योंकि जानना और न जानना ये बुद्धि का काम है, और उस बुद्धि के साथ तुम जुड़ गए, इसीलिए तुमने अपना स्वरूप मान ली। तब अपने आप को कहने लगे मैं जानने वाला हूं और नहीं जानने वाला हूं, मैं जड़ हूं। ये तो तुम कारण शरीर के साथ जुड़कर तुम कह रहे हो, तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? स्वरूप तो ये सबका साक्षी है, आगे बताएंगे उस स्वरूप को। तो इस सातवें मंत्र के द्वारा जीवात्मा के रूप का वर्णन करते हैं। कैसा है जीवात्मा? गुणान्वयः, जीवात्मा हो और वो गुण से युक्त न हो ये संभव नहीं है, क्योंकि जीव भाव के लिए उपाधि से संबंध होना पड़ता है। उपाधि जितने भी होंगे उसमें गुणों का प्रभाव रहेगा, गुणों का अस्तित्व रहेगा। जगत के सारे उपाधियां वह माया के कार्य हैं, प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए माया में तीन गुण विद्यमान हैं, तो उनके कार्यों में भी तीन गुण विद्यमान हैं, इसलिए वह गुणान्वय, गुण से अन्वित को गुणान्वय, गुण का अन्वय है उसमें। तुम जागृत में बैठे हो तो भी गुणान्वित हो, गुण से अन्वित हो, गुण से युक्त हो। तुम सपने में जाते हो तो भी गुण से युक्त होते हो, गुणान्वित। गहरे निद्रा में तुम चले जाते हो सुषुप्ति अवस्था में तो भी तुम गुणान्वित हो। तुम ये जो कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं जाना, ये तमोगुण का भाव तुम अपने में आरोप करते हो। तमोगुण इतनी गाढ़ रूप में वहां अभिव्यक्त हो गया, और उस गाढ़ रूप में अभिव्यक्त हुआ हुआ जो तमोगुण हो गुण है उसके साथ तुम जुड़े हुए होने के कारण तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता। रजोगुण का जो प्रगाढ़ भाव है वो अभिव्यक्त हुआ हुआ होता है, तब तुम बिना किसी उपादान कारण, सहकारी कारण और निमित्त कारण के सारे पदार्थों का सृष्टा बन जाते हो। स्वप्नावस्था में घर बना लेते हो तुम, संकल्प मात्र से। एक घर बनाने के लिए कितनी सामग्री चाहिए, कितना समय चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लेकिन इस सब के न होने पर भी स्वप्न में स्वतंत्र निजी घर तैयार कर लेता है। स्वप्न में भोजन तैयार करता है, भोजन तैयार करने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है, कितने समय की आवश्यकता है। कम से कम खिचड़ी पकाने के लिए भी आधा घंटा लग सकता है। खाओ खिचड़ी, कुछ न बिगड़ी, न पेट बिगड़ी है, खाओ खिचड़ी कुछ न बिगड़ी। और खिचड़ी न खाने से, उठपटांग खाने से ही पेट बिगड़ता है, और जिस समय पेट बिगड़ जाता है उस समय फिर पेट को ठीक लाइन में, ट्रैक में लाने के लिए क्या खाना पड़ता है? खिचड़ी खाओ है। खाओ खिचड़ी, खिचड़ी पकाने के लिए भी तुम्हें समय लगता है, कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे से पहले तो तुम पका ही नहीं पाओगे। प्रेशर कुकर में डालोगे तो भी 15 मिनट लग सकता है, लगेगा कि नहीं बोलो? इससे कम समय में पका पाओगे खिचड़ी? लेकिन स्वप्न में 56 प्रकार के व्यंजन तुम 1 सेकंड में पका देते हो। स्वप्न ये स्वल्प समय में 56 प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं। इस सारे की सारी क्षमता तुम्हारे में कहां से आ गया? रजोगुण के अभिव्यक्ति से आ गया। रजोगुण से संबंधित होने के कारण तुम में ये क्षमता आ गई, और जागृत अवस्था में इस आपको तुम जानते हो, सत्वगुण से संबंधित होने के कारण इस समय के सारे व्यवहार कर रहे हो, बैठकर आराम से सत्संग सुन रहे हो प्रेमपुरी आश्रम के सभा कक्ष में, प्रवचन कक्ष में। गुणान्विता, ये गुणों से समय समय में युक्त होना, संबंधित होना, कभी सत्वगुण से युक्त होना, भजन करने लग गए, कभी रजोगुण से युक्त हो गए तो व्यापार करने लग गए, कभी तमोगुण से युक्त हो गए तो रोने और बिलाप करने लग गए, सत्वगुण से युक्त हो गए तो हंसने लग गए। कौन हंसने वाला है, कौन रोने वाला है, कौन विषाद करने वाला है, ये तुम्हारा ही रूप है। हंसने का रूप भी तुम्हारा है और रोने का रूप भी तुम्हारा है। प्रसन्न होने का रूप और विषाद में डूब जाने का, गम में रहने का रूप भी तुम्हारा है। लेकिन ये सब रूप गुणान्वित, गुण से युक्त होने पर ये सारे रूप होते हैं। तो ये जीव का स्वभाव है कि वह जब तक जीव भाव में रहेगा, जीव का ये स्वभाव है कि वह जब तक जीव भाव में रहेगा वह गुणों से रहित नहीं हो सकता, जब तक उसमें जीव भाव रहे। आप जब भी अपने रूप में संसार में व्यवहार में जगत में जब आप कर्ता के रूप में भोक्ता के रूप में, चाहे वो आप सामाजिक कार्य करो, चाहे व्यावहारिक कार्य करो, चाहे लौकिक कार्य करो, चाहे सामाजिक कार्य करो, चाहे स्वार्थ का कर्म करो, चाहे परार्थ का कर्म करो, गुणातीत नहीं हो सकते हो। इसलिए तो भगवान ने श्री कृष्ण को कहा, हे अर्जुन, जब तक तू अर्जुन के रूप में रहेगा तब तक तेरे लिए कर्तव्य हैं। तो यदि अपने को क्षत्रिय मानता है, तो यदि अपने को शिष्य मानता है, तो यदि अपने को किसी का भाई या किसी का पति किसी का बाप मानता है, तो तू गुणातीत नहीं हो सकता है, तो गुण ही रहेगा, गुण तेरे में संबंधित हैं। और इन सब गुण में रहेगा तो तेरे लिए बहुत कर्तव्य विहित है शास्त्र के द्वारा, और इन सारे कर्मों से तू अलग होना चाहता है तो फिर निस्त्रेय गुण्यो भव अर्जुन, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रेय गुण्यो भव अर्जुन, तो गुणातीत हो सकता है तो मैं तुझे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर सकता हूं। तू यदि गुणातीत अवस्था में पहुंचता है तो मैं तुझे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर सकता हूं। एक तरफ तो ये कह रहा है कि इस युद्ध के द्वारा पाप लगने वाला है, तो इस युद्ध के कर्ता अपने को मानता है और उस कर्म यदि कर लिया तो पाप का भागी होऊंगा मैं। नरके अनियतो वासः भवत्यत्य अनुशुश्रुमा, तब फिर तो गुणान गुण से युक्त है, गुण से युक्त है तब तेरे लिए कर्तव्य का विधान है और इससे तू बचना चाहता है तो गुणातीत हो जा, गुणातीत हो जाता है तो तू मुक्त हो गया, मैं छोड़ दूंगा तुझे अभी। गुणान्वय ये जीव का स्वरूप है, गुण से अन्वित होना, गुण रहना और गुण से जुड़ना, ये दो चीज है। गुण रहना ये माया का स्वरूप है, गुण से जुड़ना ये जीव का रूप है, गुणातीत होना जीव का स्वरूप है, गुण से युक्त होना जीव का रूप है। गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता, इसलिए जब तक जीव रहेगा तब तक वह भोक्ता रहेगा, और जब उसमें भोक्ता भाव रहेगा तब उसमें कर्ता भाव रहेगा। जब तक गुण से युक्त होगा वह कर्ता और भोक्ता भाव से रहेगा। वो गुण से युक्त होवे और कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होवे ये संभव ही नहीं है। कर्ता और भोक्ता भाव से रहित कौन होगा? जो गुणातीत होगा, गुण से परे होगा। कुटस्थ गुणातीत है, इसलिए कुटस्थ में कर्ता और भोक्ता भाव नहीं है। कुटस्थ तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे स्वरूप में कर्ता भोक्ता भाव नहीं है, लेकिन कर्ता भोक्ता जो भाव है वो गुण से युक्त होने पर तुम्हारे में कर्ता भोक्ता भाव आ गया। इसलिए कहा फल कर्म करता, जीवात्मा का स्वभाव ही बन गया है। किसी भी कर्म को करने में वो तब प्रवृत्त होता है जब कभी उस कर्म का उसको कोई फल दिखाया जाता है, तभी जाकर वह उस कर्म को करने में प्रवृत्त होता है। यदि उसको फायदा उसका फल न दिखा वो, तो व्यक्ति ऐसा उदास हो जाता है कि उस कर्म में प्रवृत्त होगा ही नहीं। पता नहीं वेदांत सुनकर आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम उसका गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आप वेदांत सुनने में प्रवृत्त क्यों हुए? इसलिए न कि वेदांत श्रवण के बाद मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिलेगी। आपके सामने ये लक्ष्य यदि न रखा जाए तो आप ये एक घंटा बर्बाद नहीं करना चाहोगे। आपके सामने ये लक्ष्य रखा गया है, उपनिषद ने रखा है, श्रुतियों ने रखा है, आचार्यों ने रखा है। वेदांत श्रवण ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। यदि तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो, दुख और झंझट से मुक्त होना चाहते हो, तो तुमको वेदांत श्रवण करनी चाहिए। जब तुम्हें ये बात समझाई जाती है तब वेदांत सुनने में तुम्हारी रुचि बढ़ती है।